ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीरता होने के लिए सांसदों का सरकार का ध्यानाकर्षण। नागरिकों के सूचना के अधिकार और सार्वजनिक हित को संचार प्रणाली के केंद्र में रखने पर सूचना तथा संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा का जोर। नेपाली कांग्रेस के 15वें महाधिवेशन को रोकने की मांग करते हुए सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर। और हैती में सशस्त्र समूह के हमले में कम से कम 47 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा ने नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 की पूर्व व्यवस्था को पुनर्जीवित करने संबंधी विधेयक 2083 को दफावार चर्चा के लिए विधायन प्रबंधन समिति में भेजने जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कानून न्याय तथा संसदीय मामलों की मंत्री शोभिता गौतम ने प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त विधेयक को दफावार चर्चा के लिए विधायन प्रबंधन समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। आज की बैठक के शून्य समय में सांसदों ने नैतिक तथा यौन शिक्षा, महिला सुरक्षा और यौन हिंसा में कमी लाने सहित विभिन्न विषयों पर गंभीरता से काम करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। सांसदों ने 3 वर्षीय बालिका गरिमा चौधरी के साथ हुए यौन अपराध और हत्या की घटना में संलिप्त दोषियों को कानून के अनुसार कार्रवाई करने की मांग भी की। इसी तरह सांसदों ने प्रादेशिक अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी और लापरवाही के कारण प्रसूता महिलाओं का स्वास्थ्य जोखिम में पड़ने तथा बाजुरा सहित ग्रामीण जिलों में चिकित्सक और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच विस्तार करने की आवश्यकता पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। सांसदों ने ऐसे देशों में जहां नेपाली दूतावास नहीं है वहां कूटनीतिक पहल आगे बढ़ाने का भी सरकार से अनुरोध किया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक 16 भाद्र गत मंगलवार दोपहर 1:15 होगी। प्रतिनिधि सभा की आज दोपहर 1 होने वाली बैठक अब कल बुधवार दोपहर 1 होगी। संघीय संसद के महासचिव पद्म प्रसाद पांडे द्वारा आज जारी सूचना में बताया गया है कि प्रतिनिधि सभा नियमावली के अनुसार बैठक बुधवार दोपहर 1 के लिए निर्धारित की गई है। युवा श्रम और रोजगार मंत्री रामजी यादव ने कहा है कि सभी प्रकार के घरेलू कामगारों को व्यवस्थित और सम्मानजनक बनाने के लिए मंत्रालय ने कार्यविधि तैयार कर ली है। उद्योग और वाणिज्य और श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति की आज हुई बैठक में मंत्री यादव ने कहा कि श्रम ऐन में संशोधन होने के बाद श्रमिकों से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने समिति को जानकारी दी कि लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई है, लेकिन कानूनी जटिलताओं के कारण श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने में कठिनाई हो रही है। बैठक में समिति के सदस्यों ने श्रमिकों के साथ होने वाले सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करने के लिए समिति को कठोर रूप से प्रस्तुत होने, विशेषज्ञ समिति का गठन कर समस्याओं की पहचान करने और समाधान खोजने सहित विभिन्न विषयों पर ध्यान आकर्षित कराया। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि तकनीकी विकास के साथ संचार क्षेत्र में बदलाव आ रहा है, लेकिन अभिव्यक्ति और प्रेस स्वतंत्रता, नागरिकों के सूचना के अधिकार तथा सार्वजनिक हित को केंद्र में रखना जरूरी है। काठमांडू में जारी AIBD के 24वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि AI और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल के साथ मीडिया को तथ्यपरक, निष्पक्ष और जिम्मेदार सूचना प्रसारित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गलत सूचना पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंध के बजाय मजबूत पत्रकारिता, मीडिया साक्षरता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नेपाली कांग्रेस के 15वें महाधिवेशन को रोकने की मांग करते हुए आज सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की गई है। पार्टी के पूर्व सभापति शेर बहादुर देउबा और तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्ण बहादुर खड़का ने आगामी असोज में निर्धारित महाधिवेशन को रोकने का आदेश देने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। सर्वोच्च अदालत के प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइराला के अनुसार आज कांग्रेस के देउबा पक्ष द्वारा दायर याचिका में पूरक निवेदन भी दर्ज कराया गया है। याचिका पर सुनवाई के लिए भाद्र 11 गते की तारीख तय की गई है। कांग्रेस की निर्वाचन समिति ने 15वें महाधिवेशन का कार्यक्रम सार्वजनिक करते हुए बताया कि महाधिवेशन आगामी आश्विन 16 से 19 गते तक काठमांडू में होगा। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सरकार में सत्तारूढ़ नेकपा के 3 नवनियुक्त मंत्रियों ने आज पद तथा गोपनीयता की शपथ ली। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने पूर्णता पा ली है। स्वास्थ्य मंत्री दीपेंद्र कुमार पुन, आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री इंद्रजीत थारू तथा कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्री कृष्णा कुष्मा थारू ने प्रदेश प्रमुख कृष्ण बहादुर घरती मगर के समक्ष शपथ ली है। सल्यान में स्क्रब टाइफस संक्रमण से 3 लोगों की मौत हो गई है। दामरा गांव पालिका के स्वास्थ्य शाखा के अनुसार संक्रमण के कारण बड़ा नगर नंबर 5 के एक और वाडा नंबर 6 के 2 पुरुषों की उपचार के दौरान मौत हुई है। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख यज्ञ बहादुर बसनेत के अनुसार दारमा गांव पालिका में 30 और अन्य स्थानों में 11 समेत कुल 41 लोगों में स्क्रब टाइफस संक्रमण की पुष्टि हुई है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने नवलपरासी पश्चिम स्थित नापी कार्यालय के सर्वेक्षक बिंदेश्वर शाह सूढ़ी के खिलाफ गैरकानूनी संपत्ति अर्जित करने के आरोप में विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। आयोग के अनुसार सूढ़ी ने 2046 से 2081 तक 3,71,84,551 रूपये की अवैध संपत्ति अर्जित की है। उनकी कुल वैध आय 6,03,85,000 रूपये थी, जबकि खर्च और निवेश 9,75,69,000 रूपये पाया गया है। संपत्ति जब्ती के प्रयोजन से उनकी पत्नी सुमित्रा देवी शाह को भी प्रतिवादी बनाया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हैती की राजधानी पोर्ट आ प्रिंस के पास स्थित क्रेश काफ इलाके में सशस्त्र गिरोह के भीषण हमले में कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। हमला सोमवार रात करीब 10:30 बजे शुरू हुआ। हथियारबंद हमलावरों ने इलाके में घुसकर लोगों पर हमला किया और कई घरों में आग लगा दी। कुछ स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार हमलावरों ने विस्थापित लोगों के शरण लेने वाले एक चर्च को भी निशाना बनाया। केस काफ राजधानी के आसपास पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है और यहां से पोर्ट आ प्रिंस की ओर जाने वाले महत्वपूर्ण मार्गों पर नजर रखी जा सकती है। इलाके में पिछले वर्ष से सशस्त्र गिरोहों के करीब 1 दर्जन हमले हो चुके हैं, जिसके कारण हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। हमले के बाद स्थानीय लोगों में सरकार और पुलिस के प्रति भारी आक्रोश है। उनका आरोप है कि पुलिस स्टेशन के बेहद करीब हमला होने के बावजूद सुरक्षाकर्मी लोगों की रक्षा नहीं कर सके। कई लोगों ने स्थानीय पुलिस प्रमुख के इस्तीफे की मांग की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीरता होने के लिए सांसदों का सरकार का ध्यानाकर्षण। नागरिकों के सूचना के अधिकार और सार्वजनिक हित को संचार प्रणाली के केंद्र में रखने पर सूचना तथा संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमलसेना का जोर। नेपाली कांग्रेस के 15वें महाधिवेशन को रोकने की मांग करते हुए सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर। और हैती में सशस्त्र समूह के हमले में कम से कम 47 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।